जिस आदमी की नौकरी की इब्तदा मुल्तान से होती है वो टॉप पे जाता है, क्योंकि मेरी अपनी नौकरी की इब्तदा मुल्तानी की, दी वेरी फर्स्ट जॉब विच आई टुक अप वाज थ्री इयर्स। तो उसको ये ब्रिटिश कंपनी होती थी, तो वो डीसी फ्लायर थे जनरल मैनेजर इसके। इंटरव्यू के फौरन बाद उसने मुझे कहा कि ओके रिसीव योर अपॉइंटमेंट लेटर एंड लीव फॉर मुल्तान इमीडिएटली। तो जाके दो दिन के बाद मुल्तान में 7 जुलाई 1966 को दोपहर 1 बजे कुर्सी में बैठ गया था। तो आदमी ज्यादा फिर टॉप पर है, तो आपकी इब्तदा भी वहीं से हुई है। तो देखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस दिन होते हैं आप, लेट्स सी ना। लेकिन अगर मुल्तान आपकी पोस्टिंग हो ही गई है तो एक काम कर लीजिएगा, वहां 3 जगहों पे जब भी वक्त मिले हाजिरी जरूर देते रहे, लेकिन इसी तरतीब में जिस तरतीब से मैं कह रहा हूं। किले पर हैं ये मजार, पहले जाइए शाहरुख ने आलम साहब के यहां, फिर हजरत बहाउद्दीन ज़किया रहमतुल्लाह अलैह, और फिर वहीं से एक सड़क नीचे उतरती है, जब मेन रोड पे पहुंचेंगे किले से नीचे उतर के लेफ्ट को टर्न लें तो थोड़ा आगे जाके शाह शम्स सब्ज़वारी हैं, जिनको लोग शाह शम्स तबरेज भी कहते हैं। वो दर हकीकत शाह शम्स सब्ज़वारी हैं। शाह शम्स तबरेज तुर्की में दफन है कोनिया में। तो मुझे सआदत हासिल हुई है वहाँ भी हाजिरी देने की उनके दर पे। तो ये शाह शम्स सब्ज़वारी हैं और वो तबरेज हैं दोनों ईरानी, क्योंकि सब्ज़वार भी ईरान में है और तबरेज भी ईरान ही में है। लेकिन फर्क यह है कि ये शाह शम्स सब्ज़वारी जो मुल्तान में दफन है बहुत धीमे आदमी हैं और मोहब्बत वाले आदमी। शाह शम्स तबरेज जलाली हैं और वहाँ शहनशाहियत का अंसर है, जो तुर्की में उनका मज़ार है वो इस कमरे से छोटा है, इसका 50% कह लें। लेकिन आप अंदर दाखिल हों तो साफ एहसास होता है कि किसी शहनशाह के दरबार में दाखिल हो गए आप। वही रोब दबदबा उसी किस्म का एक जो रख रखाव है वो शहनशाह वाला है वहाँ। फिर मजाज भी उनका शहाना है, जिधर को मूड आ गया मूड स्विंग्स हैं, बस जिधर को रुख जाएगा उधर को। शासन सब्ज़वारी बहुत धीमे हैं और बहुत ठहराव है इनके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात दोनों से हुई, शासन तबरेज़ साहब से भी, शासन सब्ज़वारी साहब से भी। और शासन तबरेज़ से आप फालतू बात नहीं कर सकते, यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, प्रिसाइज ब्रीफ टू द पॉइंट, दैट्स ऑल। लेकिन शाह शम्स सब्ज़वारी उनके साथ आप मेरे अंदाज में गुफ्तगू कर लीजिए, बेमायनी और बेरब जुमले बोलते रहिए, इल जस्ट टेक इट ऑन, पुट अप विद दैट, मजे में, वेरी लविंग पर्सन। मौलाना रोम का भी ये है, बहुत कम लोगों को, मौलाना रोम से तो बहुत मुलाकात रही, बेतहाशा मुलाकात हुई, से खासी लंबी लंबी मुलाकातें और बड़ी कसरत से मुलाकातें हुई। मौलाना रोम के अंदर भी ये है कि क्योंकि इल्म की ज्यादती है तो वहां भी प्रिसिशन और टू द पॉइंट। वो लगता है कि मोहब्बत बहुत है उनमें, नरमी भी है, लेकिन उनके जो अल्फाज हैं या उनकी गुफ्तगु का अंदाज वो मजबूर कर देता है आदमी को कि बड़ा केयरफुल गुफ्तगु करे उनके साथ, मनोरम के साथ. अदरवाइज वेरी नाइस पर्सन. एक जमाने में मुलाकात हो रही थी इनसे और ऑलमोस्ट हफ्ते में दो बार तीन बार हो जाती थी मुलाकात. तो ये फरमाते रहते थे कि आओ मेरे पास. उन दिनों मैं भी गया नहीं था इनके पास. फिर जो ज्यादा मुलाकातें हुई तो बाद में फिर मुझे दावत दी कि विद वाइफ आ जाओ, आप आए बेगम साहिबा के साथ आए. लेकिन मैं वाइफ को ले जा नहीं सका, गया जब भी तो अकेला ही पहुंचा वहां. बहुत मेहरबान और रखरखाव वाले आदमी. जो पहली बार गया था तो एक साहब और थे मेरे साथ, तो मौलाना रोम ने जिस किस्म का मोहब्बत का इजहार किया, दैट वॉज रियली समथिंग. आई वॉज टेकन अबैक बाय सरप्राइज. मौलाना साहब ने किया क्या? जब मौलाना साहब के आप मजार में दाखिल हों तो पहले इनके शागिर्द हैं, एक उनकी खबर है, उनके बाद फिर मौलाना साहब हैं. तो तुर्की के दस्तूर के मुताबिक इनकी दस्तार इनकी कब्र पर जहां सर है उसके ऊपर रखी हुई है. वो साहब थे, मैं था. तो तुर्की पूरी में कहीं आपको स्वाय टर्किश लैंग्वेज के और किसी में कोई चीज लिखी हुई मिलती नहीं है. सो इज मौलाना स्टॉम. वहां जितनी भी अबादत है, वेदर इंस्ट्रक्शंस और डिस्क्रिप्शंस एंड व्हाटएवर इट इज, सबकी सब टर्किश लैंग्वेज में है. और टर्किश लैंग्वेज का रस्म खत जो है वो लैटिन है. तो जाके मैं खड़ा होके फातिहा पढ़ रहा था तो जो साहब मेरे साथ थे उन्होंने मेरे बाजू को टच नॉक किया, थोड़ा सा टैप किया. तो मैंने आंखें खोल के उधर देखा कि क्या है. तो जहां मौलाना साहब की दस्तार थी बिल्कुल उसके ऊपर, मुझे इशारा किया आंखों से कि वो देखें ऊपर. तो वहां एक प्लेट स्टील की लगी थी, ब्लैक और व्हाइट पेंट से उस पर टर्किश में कुछ लिखा हुआ था. तो मैंने सर नॉड किया कि मैं देख चुका हूं उसे पहले जब अंदर एंटर हुआ था. तो असल में वो इस्तकबाल का एक अंदाज था. एन अपने सर के ऊपर जो तख्ती है उर्दू में काफी बड़ा, इतना मोटा बड़ा लिखा हुआ था. नेक्स्ट टाइम जब मैं गया तो मुझे एक ख्वाहिश थी. मौलाना साहब से जब भी मुलाकात हुई तो इनको मैंने उस क्लोक में देखा, जुब्बा में. वो मैं देखना चाहता था क्योंकि इनके इस्तेमाल की तमाम चीजें वहां महफूज हैं म्यूजियम में. तो वो क्लोक मैं देखना चाहता था. तो जब मैं फातिहा से फारिग हो गया, नवाफिल पढ़ के मैं वापस आया म्यूजियम की तरफ, तो मैंने वहां गाइड से पूछा कि इनका जो क्लोक है मौलाना रोम का वो कहीं महफूज रखा है. उसने कहा बिल्कुल रखा हुआ है, क्यों नहीं. वो सामने जो कमरा है उसके एंड सेंटर में जो टेबल है उसमें क्लोक है, ठीक है. उस कमरे में चला गया तो सेंटर में एक बड़ी मेज थी और उसके ऊपर शीशे का एक केस रखा हुआ था बड़ा, उसमें क्लोक, और क्लोक के ऊपर एक प्लेट पड़ी थी ब्लैक. मौलाना रोम की तो उनके मजाज में ये है. लेकिन एज अगेंस्ट दैट शाह शम्स साहब के मैं बड़ी मोहब्बत से जाता हूं. ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम जब गया वो साहब मेरे साथ ही थे, उनका दम निकला हुआ था डर के मारे, इतना खौफ और दबदबा था। छोटा सा कमरा, इस साइज का होगा, इतने हिस्से का, लेकिन क्या वहां रोब और दबदबा है। वर्चुअली यू हैव ए फीलिंग यू आर एंटरिंग इन कोर्ट ऑफ सम एम्परर, एम्परर ऑफ एम्परर्स। वाकई वो पता लगता है कि शाह शम्स तब्रेज थे क्या। तो ये मजाज का फर्क है। तो ये मौलान रोम वहां खाना खिलाते हैं मुझको, वो एक ही ठिकाना है कोने में, वाकई मजे के खाना होता। मसला ये है मेरे साथ, एक तो मैं वैसे सैयद हूं, ऊपर से लोहरिया हूं, तो चटोरा तो बेपनाह है। सैयद वैसे ही चटोरे होते हैं, और ऊपर से अगर लोहरिया हो जाए तो वो तो करेला नीमचड़ा हो गया। तो जुबान का चस्का तो है। वो कबाब खिलाते हैं, तरहिश कबाब गजब के, खाने का शौक है, लेकिन क्वांटिटी खा नहीं सकता ज्यादा, थोड़ी सी खाता हूं। लेकिन उस दिन हैरत हुई जितने कबाब बैठा बैठा खा गया वहां। और उसके साथ टर्किश लस्सी है जिसको आयरन कहते हैं, ये मजे की होती। वो इतनी इतनी पंजाबी में उसका लफ्ज गड़वी है, पता नहीं उर्दू में उसे क्या कहते होंगे, आइडिया नहीं मुझे। वो छोटी छोटी सी गड़वियां वो भर भर के ला रहा था। मैंने कहा रखते जाओ, तो मैंने कौन से पैसे देने, मौलाना रोम के अकाउंट में खा रहा हूं। तो कबाब ले आया एक प्लेट, एक प्लेट ले आया, तो मैं समझा ही खाया नहीं जाएगा, तो एक कबाब खा लूंगा ज्यादा से ज्यादा। खा गया, उसके साथ दो गड़बियां उसकी आयरन की पीली, छोटी छोटी गड़बी। फिर से मैंने कहा और लाओ कबाब, लेकिन दूसरी किस्म के। वहां जहां फर्स्ट टाइम जाके मैं ठहरा था क्राउन प्लाजा में, उसके फासले पर एक कबाब रेस्टोरेंट था जिसका नाम ही था कबाब पार्लर। तो उसके एंट्रेंस फी पर एक रेफ्रिजरेटेड शोकेस रखा हुआ है, उसमें 100 टाइप्स ऑफ कबाब डिस्प्ले पर थे। तो हमने कहा ठीक है, अब लेते आओ तुम, क्योंकि वो हौसला ये था कि मुझे पैसे तो देने ही, मौलाना रोम पे करेंगे, खा लो जितना खाना है। Very delicious. That was something wonderful. तो देखिए बात कहां से कहां चली गई। लेकिन शाह शम्स बजवारी जो है, इनसे मुलाकात है, बहुत धीमे आदमी हैं और देने में सखी हैं, इल्म देते हैं फौरी तौर पे। और इनके देने का अंदाज तकरीबन मुर्शद वाला है, जैसे मुर्शद अपने शागिर्द की जहनी और रूहानी कैफियत को सामने रख के उसका जो मखसूस इल्म है शागिर्द के लिए, उसकी मैयत डोज देता ताकि शागिर्द उसे बर्दाश्त कर ले और एब्जॉर्ब करता चला जाए। इसी तरह शाह शम्स सब्ज़वारी देते वक्त जिसको दे रहे हैं, उसकी जहनी कैफियत, उसकी रूहानी कैफियत, उसके हालात को देख के उसके मुताबिक इल्म अता करते हैं। लेकिन देते जरूर हैं, खुले हाथ की हैं। और शाह रुकने आलम तो बादशाह है, तो वाकई वो तो, लेकिन जलाल बेपनाह है। वहां होश से रहिए, वहां जरा सी कोताही ले बैठेगी आपको। शाहरुख ने आलम साहब के यहां वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत जलाल है वहां। तो जब मैं ये जो जिस दौर की बात कर रहा हूं कि मुल्तान में था, उस वक्त एज, जब मैंने जॉब शुरू किया तो उस एज थी मेरी 22 years and 25 days। तो जैसे आप हजरात को आजकल शौक है जो वजीफा मिले पढ़ने, तो मैं भी इसी तरह उन दिनों जो मिला पढ़ना शुरू कर दिया, तो कोई 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे रात को पढ़ता था। नतीजा ये हो गया कि हर वजीफे के असरात नमूदार होने शुरू हुए। ये तो पता नहीं था कि किस वजीफे के असरात मेरी रूह पर क्या मुरतब हो रहे होंगे, पता तो था नहीं, लाइल्म था, लेकिन वो असरात बहरहाल मिले। उन्हीं दोनों एक साहब मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आ गए, उनका फेस खासा डिस्टॉर्टेड था, एज उस शरीफ आदमी की मेरे ख्याल थी अराउंड 26-27 ईयर्स, लेकिन वो फेस से ऐसे लगते थे जैसे 80-85 साल के बाबा जी हैं। तो वो जो मेरे कमरे में एंटर हुए, तो आज तो शर्म आती है ये बात कहते हुए भी, लेकिन वो तो वो एज ऐसी थी कि बेसाख्ता मेरी जुबान से बुलंद आवाज में निकला कि ओह तायब्बा। तो वो अब उनका नाम ही वहां, अब पेपरों में भी वाकई तायब्बा लिखा है। तो बाद में पता लगा कि वो इस राह पर चले थे, काफी आगे चले गए। तो दिल में ये लालच आ गया कि जब मुझे कश्फ हासिल हो जाएगा तो मैं जमीन में छुपे हुए खजाने देख लूंगा, रेस के घोड़ों के नंबर कश्फ के जरिए देख लिया करूंगा, तो रुपया पैसा कमा लूंगा। तो वो उल्टी मार पड़ गई, तो उससे ये चेहरा उनका बिगड़ गया, जिस्म बिगड़ गया उनका, बड़ा डिस्टॉर्टेड फेस था उनका। तो कुछ दिन के बाद उनका पोल में मुझ पर खुल गया कि ये पढ़ाई इस किस्म की इस राह के आदमी है। तो मैंने उनसे कहा कि तायब भाई ये क्या करते हैं आप बैठे हुए, और लिखते रहते थे। तो मुझे कहने लगे कि साहब देखिए बात ये है कि आप तो अपने आप को छुपाए हुए हैं, पढ़ाई आप भी बहुत करते हैं। दैट वॉज ए शॉक टू मी, क्योंकि जिस किस्म का मेरा हुलिया था, जो एज थी और जो हरकतें थी मेरी, वो तो कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं अल्लाह का नाम भी लेता हूँ। हरकतों से मुराद ये नहीं कि मैं कोई शराब पी रहा था या जुआ खेल रहा, शरारतों से बाज नहीं आता था। तो वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी अल्लाह का नाम ही ले लूंगा। तो जब उसने कहा कि आप भी बहुत पढ़ते हैं, तो आई वॉज रियली शॉक्ड। तो मैंने कहा हाउ डू यू नो होता है अब्बा। कहने लगे साहब जब मैं आपके पास आया था तो मेरे इल्म ने मुझे बता दिया था कि मैं किसके पास आया हूं। ठीक चलिए। तो मुझे कहने लगे आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, एक पढ़ाई मैं आपको दे दूं, वो पढ़ लीजिए आप। चलिए दे दीजिए। ये कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, मैं अपनी जाती बातों में लग गया। तो मैंने कहा चलिए बता दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी दे दिए एक वजीफा, उसमें क्या है, जहां 40-42 है वहां 43 हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो तायब्बा ने पढ़ने को दे दिया। पढ़ते हुए 3-4 दिन हुए थे, तो वहां भी मैं अपने बेडरूम को अंदर से लॉक करके पढ़ता रहा। तो कमरा अंदर से मैंने बोल्ट किया, कोने में जानवाज बिछाया हुआ था मैंने, तो पढ़ के अपने वजीफे, तो जब वो तायब्बा का बताया हुआ वजीफा शुरू किया पढ़ना, तो सडनली बंद कमरे में एक साहब एंटर हुए, अस्सलाम वालेकुम वो कह के मेरे साथ बैठ गए। वो पहला मौका था जो जिंदगी में किस ऐसी किसी चीज को देखा, तो वो मेरी तो जान निकल गई इस बात पे। लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि बजाय पढ़ाई छोड़ देता डर के मारे, पढ़ना और तेज हो गया मैं। फिर दूसरा आया, तीसरा आया, पूरा कमरा भर गया, सलाम करके आए वो बैठते गए। जो ही मैंने वजीफा खत्म किया, जैसे एक एक करके आए थे, सलाम करके एक एक करके चले गए। वो तहज्जुद के लिए डर के मारे नहीं उठा मैं, आज नहीं पढ़ता मैं कुछ भी, नारा किया मैंने, ऑफिस गया। तो जब मैं अपने कमरे में एंटर हुआ तो तायब्बा पहले ही बैठे थे वहां। तो मैंने फौरी तौर पे पांव से जूता उतार के एक लगा दी। तो मैंने कहा तायब्बा तुम्हारा बेड़ा गर्क, ये क्या तुमने पढ़ने को मुझे दे दिया था, ये क्या हुआ है। मुझे कहते जी इतनी जल्दी तो नहीं ये आते आते हैं ये लोग, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं आते। तो फिर खुद ही कहने लगे ओहो आपके बुजुर्गों की मेहनत का इनाम आपको मिल गया, तो ये 4-5 दिन में आ गए। और मैंने कहा हैं क्या वो, तो फिर उन्हें समझाया कि क्या है, लेकिन वो दोबारा नहीं आए फिर। लेकिन उस दिन के बाद से जब मैं पढ़ता था वहां रात को या तहज्जुद के वक्त, तो मेरे कमरे के बाहर एक आदमी कोई टहलता था जिसके बूटों की आवाज अप एंड डाउन, वो टक 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 टक, एंड आई कुड क्लियरली मेक आउट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो अप एंड डाउन वहां फिरता रहता था। फिर और चीजें आनी शुरू हो गई, तो ये चीजें बहुत सी पैदा हो गई। अब पता लगता नहीं था कि किस वजीफे से क्या आया है, पढ़े जा रहा था मैं, लेकिन मैं भी तंग हुआ, जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने तंग होना शुरू कर दिया, क्योंकि हर आदमी देखता था उन चीजों को। तो फिर फाइनली हुआ ये कि कुरान पाक की एक आयत बहुत पसंद है मुझे, इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, बहुत पसंद। तो वो अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूं जरा आंखें बंद करूंगा तो फौरन आयत लिखी हुई आती थी सामने और आता था कि इसको पढ़ो। अगर आसमान की तरफ देखना शुरू किया तो आसमान पे लिखी हुई आ जाएगी बहुत बड़े साइज में, इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, कि इसको पढ़ो। दिल तो चाहता था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसे। जब ये वाकयात बेपनाह हो गए मेरी जिंदगी में और मैंने देखा कि अब ये मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को भी डिस्टर्ब करने लगी हैं ये चीजें, अब गाइड कोई मिल नहीं रहा था कि जो मुझे गाइड कर देता। पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे एक दिन दफ्तर में ख्याल आया कि मैं शाहरुख ने आलम साहब जाता हूं, तो कंपनी ट्रांसपोर्ट हमें ड्रॉप करती थी, तो ड्राइवर से मैंने कहा कि तुम मुझे आज घर पे ड्रॉप ना करना, सबसे आखिर पे मैं मुझे किले पर ड्रॉप कर देना। तो वो किले पर ले गया मुझे, दोपहर का वक्त था गर्मियों में, 3 बजे छुट्टी हुआ करती थी दफ्तर से, तो 3:30-4 बजे हम किले पर पहुंच गए, सन्नाटा। तो मैं शाहरुख ने आलम साहब के मजार पे दाखिल हुआ, उसमें 2 कमरे हैं, पहले एक कमरा आता है उसमें आप दाखिल होते हैं, फिर नेक्स्ट एक और कमरा। तो मैं पहले कमरे में गया तो खौफजदा होकर बाहर आ गया, वो इतनी हैबत तारी हो गई मेरे ऊपर कि मैं डर गया, वहां वापस आ गया। अगले दिन फिर ड्राइवर से कहा कि मुझे फिर वहीं ड्रॉप करो, नेक्स्ट डे मैं एंटर हो गया उसमें। तो जाके शाहरुख ने आलम साहब से मैंने गुजारिश की कि हजूर कोई मेरा मुर्शिद तो है नहीं, तो मैं आपको अपना रूहानी मुर्शिद मान लेता हूं, अपनी शागिर्दी में ले लीजिए और मुझे गाइड कर दें। तो यूं शाहरुख ने आलम साहब को अपना मुर्शिद मान लिया, और उसके बाद हुआ ये कि वो चीजें एक एक करके खत्म होनी शुरू हो गई। तो इन सब चीजों ने मेरी जान छोड़ दी। फिर इसी दौरान नवंबर 69 में प्रिंस आगा खान ने मुझे सिलेक्ट कर लिया जॉब के लिए, तो मैं 30 जनवरी 1970 को स्विगी से रिजाइन करके तो प्रिंस आगा खान के साथ चला गया, उसने मुझे यहां लाहौर पोस्ट कर दिया। तो यहां फिर मुर्शिद साहब मिल गए। तो एक दिन ऐसी मैं और मुर्शिद साहब ट्रेवल कर रहे थे बिटवीन पेशावर एंड लाहौर, तो और तो कोई काम था नहीं, ट्रेवलिंग के दौरान गाड़ी चला रहा था मैं, वो बड़े शाह साहब साथ बैठे थे मेरे, तो ये वारदातें जो पेश आ रही थी मेरे साथ वो याद आई मुझे। तो वो मैंने शाह साहब से उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मैंने ये जो आयत नजर आती थी और ये होता था कि इसको पढ़ो तुम, वो मेरे शाह साहब से बताई, ये आयत पसंद बहुत है मुझे और जब भी मैं कहीं आंखें बंद करता था या वैसे बैठता था फारिग, तो फिजा में लिखी हुई आती थी और साथ आता था इसे पढ़ो। तो कहने लगे अच्छा हुआ तुमने नहीं पढ़ा। अब देखिए हम लोग क्या गलतफहमी में मुब्तला होते हैं। कहने लगे अच्छा हुआ जो तुमने नहीं पढ़ा, ये जिन्नात थे जो तुम्हें दिखा रहे थे ये आयत, अगर तुम पढ़ते तो तुम मजदूब हो जाते, होशो आवाज खत्म हो जाते तुम्हारे। अब लोग जो हैं वो ख्वाब में कोई चीज देखते हैं कि पढ़ने को बताया, कहते हैं जी हम वली अल्लाह हो गए, हमें रब की तरफ से बताया गया ये पढ़ो। ये नहीं मालूम कि अक्सर औकात ये जिन्नात होते हैं जो दिखा रहे होते हैं। ये इन चीजों से परहेज ही करना चाहिए। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने, चूंकि बचाना था मुझे, तो देखता रहा बड़ी कसरत से। मैं दिन में 10-10, 20-20 बार देखता रहा। जी भी चाहता था पढ़ूं क्योंकि आयत पसंद है मुझे, लेकिन पढ़ी नहीं मैंने, बच गया। इसी तरह एक बार फिर मैं मजदूब होने से बचा बाल बाल, वो भी बड़े शाह साहब ने बताया मुझे। उस दिन 10 मुहर्रम थी तो मैं घर पे बैठा था, ऐसे ही बैठे बैठे दिल में ख्याल आया कि बैठा हुआ क्या कर रहा हूं, पाक शरीफ चक्कर लगाता हूं। तो छोटे भाई से मैंने कहा कि आओ चले, तो गाड़ी में बैठे हम चले गए। वहां पहुंचे तो उस वक्त तक मजार बंद हो चुका था, मुझे मालूम नहीं था कि 10 मुहर्रम को बंद हो जाता, तो उसकी धुलाई हो रही थी। लोगों से दो तो बात की तो किसी ने बताया कि इस घर के अंदर दाखिल हो सेहन में, सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाए तो आप बिल्कुल मजार पे जा पहुंचेंगे। चला गया तो मैं मजार के सेहन में पहुंच गया। वहां वो काफी धुलाई हो रही थी, लोग काफी खड़े थे, 200-250 आदमी होगा। तो मैं सबसे पीछे, क्योंकि बाद में गया था तो असूली तौर पर सबसे पीछे खड़ा होना था मुझे, वहां खड़ा होकर दरूद शरीफ पढ़ रहा था। तो सडनली मेरे लेफ्ट साइड से मेरे कान में आवाज आई, कहने लगे ये जो आदमी खड़ा है ना, ये कह रहा है कि मैंने इसके जूते चुरा लिए हैं। तो मैंने देखा तो एक फकीर था, बड़ी उलझी हुई दाढ़ी, बेतरतीब, उसकी राल बह रही थी, दाढ़ी पे राल वगैरह लगी हुई, हाथ में उसके एक मिट्टी का प्याला, उसमें चावल भरे हुए थे। तो मैंने उसे देखा, मैं सोचा ये पैसे इस बहाने से लेना चाह रहा है। वो बुरी आदत है शुरू की, वॉलेट जेब में रखता नहीं मैं कभी, गाड़ी में पड़ा होता डैशबोर्ड में, जेब में तो वॉलेट नहीं था, तो देता कहां से। तो मैं चुप कर गया। फिर थोड़ी देर में मुझे कहने लगे कि ये कह रहा है मैंने इसके जूते चुरा लिए। मैं पढ़ रहा था, दुरुशी डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं आगे जो 2-3 आदमी खड़े थे उनके दरमियान से होके आगे 2 कदम बढ़ गया। फिर 2 मिनट के बाद वो भी आवाज आ रही मेरे कान में, ये कह रहा है मैंने तुम्हारा जूता चोरी कर लिया। उससे जान छुड़ाने के लिए और आगे बढ़ गया, हत्ता कि मैं सबसे आगे पहुंच गया जाके, उससे जान छुड़ाता छुड़ाता। तो वहां आके फिर खड़ा हो गया मेरे बराबर, कहता ये मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, ये पागल है, पुलिस ने मुझे क्या मारना है, जो मार मैं बाबे से रोज खाता हूं, पुलिस ने क्या मार लेना मुझे। तो मैंने कि ये नया फ्रॉड है, अब ये क्या इसको कहोगे। तो थोड़ी देर में करता मुझे आगे बढ़ के देख के कहता वाह 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 वाह, अल्लाह ने तुझे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बना देना, चलो अब ये पैसे मांगेगा। तो अब ये डिस्टर्ब किए जा रहा बार बार। फिर थोड़ी देर में उसके बाद उसने हरकत वो की जिससे चिड़ता हूं मैं, कोई मेरे जिस्म का हाथ लगा के बात करे सब चिड़े। उसने हाथ बढ़ाया तो बड़े मजे से मेरा माथा रगड़ दिया हाथ से, रगड़ के उसको देखा, देख वाह वाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत देनी है तुझे, पढ़े जा पढ़े जा, अल्लाह बहुत इज्जत देगा तुझे, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बना देना। थोड़ी देर में मेरा नीचे का होंठ पकड़ के जोर का मसला, हाँ 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 माँ की खिदमत किया कर, अल्लाह बहुत इज्जत देगा तुझे, डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बन जाओगे। यार मनहूस आदमी क्या ये मेरे पीछे लग गया यार। तो उसके बाद थोड़ी देर में उसने मेरा ये हाथ पकड़ा और उंगलियों में उंगलियां अपनी फंसाई ऐसे, कहता पढ़ो, और बड़ी ऊंची आवाज में ऊपर को मुंह करके आसमान की तरफ पढ़ना शुरू कर दिया, हक अल्लाह अल्लाहू हक अल्लाह। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा बड़े मजे से। जब उसने देखा मैं नहीं पढ़ रहा तो मेरा हाथ छोड़ दिया उसने, और मुझे कहता ठीक है ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, दुरूद शरीफ पढ़े जा तू दिल में। तो मैं फिर अब चिढ़ रहा था दिल में बहुत बुरी तरह की, क्या मुसीबत है यार, ये पढ़ने भी नहीं देता मुझे। थोड़ी देर उसके बाद मेरे आगे प्याला उसने किया वो चावलों का, वो इतना नाक बह रहा है, राल बह रही उसका बुरा हाल, और प्याला मुझे कहता लो चावल खाओ। यार ये नहीं छोड़ेगा आज मुझे। अब उसको मैं सख्ती से कुछ कह भी नहीं रहा कि मांगने वाला है तो अल्लाह का हुक्म है कि सख्ती से कुछ मत कहो। तो मैंने बड़ा पोलाइटली हाथ उसके प्याले पे रखा, उसको एक तरफ कर दिया अपने आगे से, मुझे कहता खा लो मेरी रूह राजी हो जाएगी। ओए मैंने कहा गरीब आदमी, इसने इतनी बड़ी बात कह दी कि इसका दिल खुश हो जाएगा, अब अगर मैं नहीं खाता तो सजा मिलेगी। तो मैंने उसमें से चावल का एक दाना उठाया और खा लिया, मुंह में रख लिया, ठीक है खुश हो गया। बड़े इत्मीनान से उसने मेरी जान छोड़ दी। फौरन गया वो गंदे पांव लगाता हुआ धुले हुए फर्श पर जाके दरख्त के नीचे बैठ गया। इतनी देर में दीवान सब आ गए, तो मैंने उनसे कहा कि जी इस तरह मैं लाहौर से आया हूँ, मुझे फौरी तौर पर वापस जाना है, मैं सिर्फ फातिहा पढ़ना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टेक मोर देन ए मिनट। तो कहने लगे ये धुलाई हो जाए तो मैं फिर आपको लेके चलता हूँ, खुद ले जाऊंगा मैं आपको। तो मैंने कहा जी आप मुझे नहीं जान दे रहे, मेरे पाँव तो साफ हैं। वो सामने देखिए कितने बड़े बड़े पाँव लगाए हैं उसने गंदे, तो उसको आप नहीं रोकते। कहने लगे जी उसको कौन रोक सकता, वो तो फकीर है। तो मैं फिर भी नहीं समझा, ठीक है कहें मैं अभी लेके जाऊंगा आपको। जो ही दीवान साहब मेरे पास से हटे तो मुझे याद आया कि किसी साहब ने मुझे एक जमाने में कहा था कि 10 मुहर्रम को बाबा साहब के मजार पे एक मजदूर आता है, अगर कभी मिल जाए तो उसे छोड़े नहीं आप। ये तो वो मजदूर है, लेकिन मेरा ख्याल है फिर बहुत देर हो गई थी क्योंकि मेरे सामने बैठा था, पलक झपकने में वहां से गायब हुआ दरख्त के नीचे से वो बंदा। तो वो मैंने बड़े शाह साहब से पूछा कि इस तरह वो मुझे पढ़ा रहा था, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ नहीं पढ़ा, वो तो पढ़ा के लोगों को मजदूर करता है, तुम इस हाल को चले जाते कि जिसकी तरफ निगाह डालते वही मजदूर होता चला जाता। तो ये पढ़ाई के मामलात ऐसे हैं, हम समझते नहीं, हम लोग तो ये समझते हैं कि पता नहीं हम वलीअल्लाह हो गए और हमें इस तरह बताया जा रहा है कि ये पढ़ लें। मामलात कुछ के कुछ निकलते हैं अंदर से, हकीकत वो कुछ होती है, दिखाई हमें कुछ और दे रहा होता है। तो ये पढ़ाई के, क्योंकि इनका मामला ऐसा है, देखिए ये मामलात हैं इश्क और मोहब्बत के, और ये इश्क ऐसी चीज है जो इंसान को होश से न सिर्फ बेगाना कर देता है बल्कि एक खास किस्म की कुव्वत भी अता कर देता है, ख्वाह वो इश्क मुजाजी हो या इश्क हकीकी हो, दोनों ही में ये कैफियत है। आप देखिए एक आम आदमी, जब मुझ जैसा इंसान अगर नमाज पढ़े, गुनाहगार आदमी, तो मैं तो 2 मिनट की नमाज पढ़ूंगा और 15 मिनट अल्लाह से दुआ मांगूंगा। ये पूरी फहरिस्त तैयार की होती है मैंने कि ये मांगना है ये मांगना है ये मांगना है, वो मैं जो शर्ट पसंद आई होगी कहीं खरीदने की सकत नहीं है तो वहां से शुरू हो जाऊंगा, या अल्लाह मैं फलां शॉप के शोकेस में ये शर्ट देख के आया था, 450 पाउंड की थी, वो मुझे जरा भेज दे, एक फिर ट्राउजर भेज दे, बेल्ट भेज दे, शूज भेज दे, सॉक्स भेज दे। और यहां से शुरू होता हूं ऐसा ऐसा करता करता, मकान पर, गाड़ी पर, एक्स्ट्रा बीवी यूं नहीं मांगता, डर बहुत आता है वाइफ से कि बुढ़ापे में तलाक दे दी तो क्या होगा मेरा। तो दुनिया भर की चीजें मांगता हूं 15-20 मिनट। लेकिन अगर आप जैसा कोई नेक आदमी जब नमाज पढ़ेगा तो दुआ मांगने बैठेगा, दुआ उसको याद ही नहीं आएगी, वो अल्लाह की मोहब्बत में ही खो जाता है। वो ऐसा खोया होगा मोहब्बत में कि भूल जाएगा कि मैंने रब से मांगना क्या था, याद ही नहीं आता उसको। और अगर कोई फकीर हो जो अल्लाह के इश्क में डूबा है तो वो दुआ के लिए हाथ ही नहीं उठाता, वो सलाम फेरता तो भी अल्लाह के दीदार में डूबा होता है, उसी के ख्याल में डूबा होता है। कहां की नमाज, कहां की दुआ, वो उसी में गर्क हुआ हुआ है अपने दोस्त के ख्याल में। उसको एक ही चीज कहे जा रहा कि मुझे मिल तू, मुझे अपना दीदार करा। तो कहां शाह साहब की एक लंबी फहरिस्त और कहां वो प्यार करने वाला और इश्क करने वाले की एक ही रट है, अपना दीदार करा, तुझे देखना चाहता हूं मैं। और जब कोई शख्स ये मंजिल भी पार कर जाए तो मजलूब हो गया, फिर होश और आवाज ही खो देता है वो अल्लाह के इश्क। तो जो आदमी अल्लाह के इश्क में अपने होश और हवास खो दे तो रब तो उसको सीने से लगाएगा। तो रब तो रब है, वो तो गुनहगारों की सुनता है और उनकी दुआएं पूरी कर देता है, तो अपने चाहने वालों की दुआएं क्यों नहीं सुनेगा वो। तो इसलिए मजदूबों से दूरी रहना चाहिए। मजलूब से बचने का आसान तरीन तरीका है, ये मजलूब कई रंग में पकड़ते हैं इंसान को, ये भी है। एक तो इस तरह के मजलूब हैं जैसे वो मुझे काबू कर रहा था कि पढ़ो तुम। अगर वो किसी साहिब इल्म से मिले मजलूब तो पहचान जाता कि साहिब इल्म है, तो उसके साथ वो दूसरी तरह की शरारत करेगा, फिर उसको कहेगा मेरे लिए दुआ कर दो, और दुआ की नहीं और बंदा फंसा, उसके रंग में रंगा जाएगा, फिर मजबूब हो जाएगा। तो उससे बचने का आसान तरीका यह है कि जब मजबूब कहे कि तुम मेरे लिए दुआ करो, मैं क्यों करूं, तुम करो मेरे लिए दुआ, मजाले वहां टिक जाए, भाग जाएगा उसी वक्त, छोड़ जाएगा जगह। आसान तरीका उससे बचने का ये कि जहां कोई मजबूब मिला निगाह मेरे लिए दुआ कर दें, क्यों मैं क्यों करूं, तुम करो मेरे लिए दुआ, चलो फिर नहीं रुकेगा, भाग जाएगा। वो जो इश्क में डूबना है दरअसल वही मेराज है, वहां मिलता है फिर रब, फिर वो लाड लड़ाता है, सही सही लाड लड़ाता है रब, फिर तो वो इंसान की फरमाइशें भी पूरी करता है, उससे जिद करें पूरी कर देता है। नहीं नहीं नहीं, ये लाजम मलजूम नहीं है दोनों। दरअसल वो चूंकि इश्क में डूब जाता है तो होश और हवास तो उसके खत्म हो गए। तो जब किसी शख्स के होश और हवास खत्म हो गए तो कानून का इत्तलाक उस पर होता नहीं है। ये देखिए आपके बाजू में जज साहब बैठे हैं, ये बता देंगे कि अगर इनके सामने हाई कोर्ट में मुकदमा आ जाए इस बात का कि एक पागल ने किसी को कत्ल कर दिया तो ये उसको सजा नहीं देते, बल्कि ये ऑर्डर इशू कर देंगे कि इसे पागलखाने में दाखिल किया जाए ताकि दूसरों को नुकसान न पहुंचाए।
उसे सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि कानून का इत्तलाक उस पर नहीं है, वो जो आवाज उस पर कायम नहीं। इसी तरह शरीयत का इत्तलाक मजदूर पर नहीं होता क्योंकि शरीयत क्या है, कानून है। तो जो अपने होशो आवाज खो बैठा है, दीवाना है, मजनू है, उस पर कानून का इत्तलाक हो नहीं सकता। तो जब शरीयत उस पर लागू नहीं है, कानून उस पर लागू नहीं है, तो पाकीजगी और तहारत और पोशीदा रहना, लिबास मलबूस रहना, उससे भी वो एग्जम्प्ट हो गया, उस पर लागू नहीं होता। तो यूं उसकी उस पर पकड़ नहीं होती, उस पर गिरफ्त नहीं आती। अगर सालिक हो बंदा, ऐसा वली अल्लाह जो होशो आवास में है, अगर वो ये कोताही कर ले तो पकड़ा गया, फिर वो गिरफ्त में आ जाएगा क्योंकि उसको होशो आवास कायम है। और ये बात चल रही है मजदूब की और सालिक की, तो एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि वलायत पोशीदगी है और नबूवत जाहिर है। नबूवत का जाहिर करना लाजिम है नबी पर, उसका ऐलान करता है कि मैं नबी हूं। वली को पोशीदा रहने का हुक्म है कि वो अपने आप को छुपाता है कि मैं, मुझे वलायत मिली है। ये देखिए, उसकी वजह यह है कि वली नूरे नबूवत से रोशनी हासिल कर रहा है, तो इसका जो नूर है वो एक्वायर्ड है। वली का नूर का मंबा कहीं और है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक है। हर वली हर नबी वहीं से नूर हासिल करता है और इस मकाम को इलम अल्लाह कहते हैं। यह मंजिल वलायत की मंजिल कहलाती है कि वहां जाके नबी और वली मुत्तहिद हो जाते हैं और वहां नूर दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से मिलता है, वहां से रोशनी मिलती है। तो इसे क्योंकि मंजिल तय करनी है तो पोशीदा रहता है, नबी मंजिल पा चुका है तो उस पर जाहिर होना लाजिम हो जाता है। फिर ये याद रखिए, इल्म अल्लाह का मकाम जो है वो वली के लिए लेडर का आखिरी डंडा है। लेडर चढ़ रहा है, मकामात तय कर रहा है और ये मकाम हकीकत भी कहलाता है। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मकाम हकीकत, मकाम हैरत। ये मकाम हकीकत ये है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। और जितने नूर हैं, नबूवत का हो या वलायत का हो, वो उसका मंबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक है, नूर वहीं से मिलता है। ये याद रखिए। और शरीयत से बाहर रहकर उस नूर तक रसाई नहीं होगी कभी। इसीलिए ये बात कही जाती है और जितने मुस्तनद औलिया इकराम गुजरे हैं दुनिया में, हजरत भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसे, हजरत पीरान पीर गौसुल आजम दस्तगीर साहब जैसे, इनका फरमान यह है कि वो शख्स वली हो नहीं सकता जो एक भी सुन्नत को तर्क कर दे, क्योंकि सुन्नत की पैरवी आपको शरीयत तक ले जाएगी। ये याद रखिए। इसलिए वो जो हम ये कहते हैं कि रास्ता वली का ये बनता है कि पहले मुर्शद की दहलीज, वो चौकट पकड़ के आप बैठेंगे तो मुर्शद आपको सफर तय कराएगा हजरत अली करमल्ला वजह के दर तक। तो हजरत अली करमल्ला वजह का जब दर पकड़ेंगे आप, तो फिर हजरत अली करमल्ला वजह आपको सफर तय कराएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक का। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज आप पकड़ेंगे तो रब तक पहुंचा दिए जाएंगे आप। ये रूट ये बनता है। تو اس میں شریعت کی پابندی بڑی لازم ہے یہ اس بات پہ، اس میں چھوٹ نہیں ہے کسی کے لیے. تبھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی ولی ہو ہی نہیں سکتا جو ایک بھی سنت کو ترک کر دے. پابندیاں بڑی کڑی ہیں.